नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार सदन में नियमानुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। असम सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की। किसानों को दूध पर ₹5 प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, इस वर्ष जून में UPI से 18 अरब 39 करोड़ लेन देन के साथ भारत तीव्र भुगतान में सबसे आगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 47% बढ़ा। अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन को सर्वाधिक निर्यात। भारत के पहलवान सुमित ने बुडापेस्ट में विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में रजत और अनिल मोर ने कांस्य पदक जीता। और शतरंज में कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये संसद का पहला सत्र है। एक रिपोर्ट।
मॉनसून सत्र के दौरान 17 विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की उम्मीद है। इन विधेयकों में जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि वह संसद में उठाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियम के अनुसार चर्चा करने के लिए तैयार है। सुपर्णा के साथ रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र के दौरान निपटाए जाने वाले महत्वपूर्ण विधायी और अन्य कार्य तय कर लिए गए हैं। संसद सत्र से पहले कल सरकार ने दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक बहुत ही रचनात्मक रही और सदन नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का रुख सामने रखा। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह स्पष्ट है।
We are very open to discussion on important issues like Operation Sindoor related to all the incidents right from the attack in the Pahalgam. These are issues of great national importance. Government is not shying away from discussion. The only thing I'm saying is we will discuss under certain rules, certain procedure with a convention which is there before us.
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की मांग की।
हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें, लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है।
बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन का सत्र शुक्रवार 25 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान 10 से अधिक विधायी और संशोधन विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 23 से 26 तारीख तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में रहेंगे। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर होंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री मोइज़ू के साथ आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने डेयरी किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए कल गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव काला क्षेत्र में एक नई योजना की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सहायता संगठित डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं को दूध उपलब्ध कराने वाले किसानों के लिए होगी।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का एक प्लांट की प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी योजना औपचारिक रूप से शुरू कर दी है।
वी आर गोइंग टू गिव ₹5 against per liter of milk which is produced by our cooperatives. So that scheme will straight away benefit 20,000 farmers and I am very happy that Assam has started a new scheme targeting the specific goal of increasing milk production.
मुख्यमंत्री के अनुसार ये योजना डेयरी किसानों की उत्पादन बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों को लिंक करने और आसानी से त्वरित लेनदेन करने में सक्षम बनाकर देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। एक रिपोर्ट।
इसके अंतर्गत न केवल भुगतान को सरल बनाया गया है बल्कि लाखों छोटे व्यवसायों को भी न्यूनतम लागत पर डिजिटल भुगतान अपनाने में सक्षम किया गया है। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से अब प्रति माह 18 अरब से अधिक का लेन देन हो रहा है। ये भारत के कुल डिजिटल भुगतानों का 85% है। इस वर्ष जून में 24.3 लाख करोड़ रुपए के 18 अरब 39 करोड़ लेन देन हुए। 49 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ताओं और 6 करोड़ 50 लाख व्यापार के साथ यूपीआई 675 बैंकों को एकीकृत डिजिटल ढांचे के माध्यम से जोड़ता है। समाचार कक्ष से पूजा।
मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात में 47% की वृद्धि हुई है और ये 12 अरब 47 करोड़ डॉलर मूल्य का हो गया है। ये वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश के स्थापित होने का संकेत है। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन तीन शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात के लिए अन्य प्रमुख गंतव्य हैं। ये विविधता भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती विश्वसनीयता और देश के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की पुष्टि करता है। भारत से 60% से अधिक इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का निर्यात अमेरिका को किया गया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को 8% और चीन को लगभग 4% निर्यात किया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के तैयार कपड़ों के लिए भी अमेरिका प्रमुख निर्यात गंतव्य है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन को लगभग 9%, यूएई को लगभग 8%, जर्मनी को लगभग 5.5% और स्पेन को करीब 5% से अधिक निर्यात किया गया।
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल शाम लेसेथो के मासेरू पहुंचे। मासेरू में लेसेथो के सूचना, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री तथा शिक्षा और प्रशिक्षण, श्रम और रोजगार मंत्री से भी उनकी मुलाकात होने की आशा है। इससे पहले श्री मार्गरीटा ने इस्वातिनी की यात्रा की और वहां के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्री के साथ बैठक की। उन्होंने कल इस्वातिनी में भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात की। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।
आए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कावड़।
कांवड़ियों की बड़ी संख्या भगवान शिव को अर्पित करने के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार में एकत्र है। डाक कांवड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हरिद्वार की सड़कों से लेकर हर की पैड़ी तक का पूरा इलाका श्रद्धालुओं और वाहनों से खचाखच भरा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लगातार श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अब तक 2.5 करोड़ से भी अधिक कांवड़िए पावन गंगाजल लेने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से आज तड़के 3,791 श्रद्धालुओं का 19वां जत्था श्री अमरनाथ जी गुफा के लिए रवाना हुआ। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
भारतीय पहलवान सुमित ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा येनोश मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता में 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में यूरोपीय चैंपियन अजरबैजान के निहात मम्मादली ने 5-1 से हराया। वहीं अनिल मोर ने ग्रीको रोमन के 55 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के इक्तियोर बोतिरोव को 7-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय दल ने बुडापेस्ट कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। शतरंज में कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला शतरंज विश्व 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। आज क्वार्टर फाइनल में दिव्या देशमुख और हरिका द्रोणावल्ली का मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:35 पर शुरू होगा। स्क्वाश में युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह काहिरा में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। आज से शुरू हो रही प्रतियोगिता 6 दिन तक चलेगी और विश्व के 234 शीर्ष अंडर-19 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में 6 पुरुष और 6 महिलाएं सिंगल्स मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश करेंगी। और ओरिएंटल कप फुटबॉल का तीसरा चरण आज से दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में खेला जाएगा।
खेलों के बाद बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर अगले 2-3 दिन में तेज बारिश की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून अधिक सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी है।
हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से ही बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है और प्रदेश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा मंडी जिला के मुरारी देवी में 58 मिलीमीटर दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन से इस समय 142 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 26 बिजली ट्रांसफार्मर और 40 पेयजल योजनाएं भी ठप हो गई हैं। 20 जून से अब तक प्रदेश में वर्षा जनित दुर्घटनाओं में 125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 215 लोग घायल हैं जबकि 34 लोग अभी भी लापता है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी और सिरमौर में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि 3 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू और शिमला में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर कल देर रात से मूसलाधार वर्षा जारी है।
राजधानी देहरादून, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बागेश्वर में लगातार बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, साथ ही कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने की भी खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज राजधानी देहरादून में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। साक्षी सिंह, समाचार, देहरादून।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जंक फूड का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखारिया और एम्स की ही आहार विशेषज्ञ डॉक्टर माला मनराल परिचर्चा में भाग लेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद विशाल। संसद का आज से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, संसद सत्र आज से, मॉनसून में होगी मुद्दों की बरसात, विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दे उठाएगा। वहीं देशबंधु ने सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान को दिया है, संसद में हर सवाल का जवाब देगी सरकार। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने किए हस्ताक्षर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के हवाले से राष्ट्रीय सहारा लिखता है, लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हुआ हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव यात्रा पर दैनिक जागरण ने लिखा है, पीएम के ब्रिटेन दौरे पर होंगे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर।
धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार सदन में नियमानुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। असम सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की, किसानों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, इस वर्ष जून में UPI से 18 अरब 39 करोड़ के लेन देन के साथ भारत तीव्र भुगतान में सबसे आगे, और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात 47% बढ़ा, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन को सर्वाधिक निर्यात। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।